Hare Krishna.
Ask them to increase the sound.
Hare Krishna. आप सबका स्वागत है यहाँ शिवरात्रि के इस महोत्सव में. एक छोटे से भजन से प्रारंभ करेंगे. आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब इसको दोहराएं और फिर थोड़ा बहुत शिव जी के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे.
आपको पहला स्वागत करके हम हार अर्पण करते हैं. हम ऐसा करने से
आप लोग जो पीछे खड़े हैं वे लोग आके बैठ सकते हैं. बहुत जगह है आगे की तरफ. जो लोग पीछे बैठे हैं पीछे खड़े हैं केवल आगे आ जाएं. भी थोड़ा देर कीर्तन चालू रख सकते डूइंग समथिंग. Maybe you can come on the stage. Please, get the chair.
I won't be comfortable. I'm sitting in a higher seat than you. यहाँ पे पधारे हुए सब जनों को महाशिवरात्रि का शुभकामनाएं। इस मंच पर आज इस्कॉन के आदरणीय परम पूज्य श्री दयाल चंद्र प्रभु जी विराजमान हैं, उनको हम महादेव वास्ती टेम्पल कमेटी की ओर से और सब भक्तगणों की ओर से स्वागत कहना चाहेंगे। उनको सबकी तरफ से स्वागत स्वागत सुस्वागत। उनको हमारे टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष श्री चंद्रू एस नायक मालगा वे आकर उनको फूलों का माला पहनाते हुए उनका सभी की तरफ से स्वागत करें। मैं चंद्रू एस जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। धन्यवाद चंद्र जी। और इस मंच पर विराजमान है आदरणीय परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण प्रभु जी इस्कॉन करवर, इनको भी हम टेंपल कमेटी की ओर से और सभी भक्तगणों की ओर से स्वागत करते हुए उनको टेंपल के पुजारी जी श्री दुर्वा वाई नायक मालगर वे माला पहनकर स्वागत करें। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे माला पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अभी हम अपने टेम्पल कमेटी की ओर से इस मंच पर विराजमान प्रभु जी श्री अतुल कृष्ण प्रभु जी को शॉल पहनाकर एक सम्मान करना चाहते हैं और ये कार्य टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष श्री चंद्र एस नायक महालगार करेंगे। और इसका मुंबई से आए हुए प्रभु जी को हमारे पुजारी जी फल देकर उनका आदर करेंगे। सब लोग तालियों के उनका आदर करें। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम अनुरोध करेंगे प्रभु जी से कि वे शिव जी के बारे में कुछ थोड़ा सा ज्ञान हम में भी बांटे। और यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तगणों को टेंपल कमेटी की ओर से और सभी की ओर से स्वागत करते हुए इस शिवरात्रि का शुभकामनाएं देते हुए इस प्रवचन को प्रारंभ करने के लिए हम स्वामी जी से अनुरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।
एक छोटे से भजन से प्रारंभ करेंगे, आप सब कृपया साथ दीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी सीजन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा शिल प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आप सबको आवाज क्लियर आ रही है पीछे तक? जो सबसे पीछे दीवार के पास बैठे हैं वो लोग अगर अपना हाथ ऊपर करें तो पता चलेगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ बस ठीक है, फिर आ रही है, क्लियर है एकदम, हाथ ऊपर करें। यस ओके। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि आज के इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सब यहाँ इस मंदिर में हैं और उससे भी महत्वपूर्ण आप सब इस मंदिर में आरती कर चुके हैं और अब कथा श्रवण करने वाले हैं। किसी भी उपवास का उद्देश्य होता है भगवान के निकट जाना और आज तो महाशिवरात्रि है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिवस पर रात भर जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और आप सब महान भक्त हैं शिव जी के, तो स्वाभाविक है कोई भी सोएंगे नहीं आज रात को, तो क्या करेंगे, कथा सुनेंगे रात भर। तो आप में से कितने लोग रात भर यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं, हाथ ऊपर कीजिए। ओह इतने सारे हैं, हमें लगा शायद केवल हमारा हाथ ऊपर होगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एवे तरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं, जैसा प्रमाण देते हैं, जैसी शिक्षाएं देते हैं, सभी लोग उनका अनुगमन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ लोग कौन हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है, अर्थात जिन्होंने भगवान को जाना है, जिन्होंने अपने संबंध को जाना है, जिन्होंने ये जान लिया है कि ये जो जीवन है इसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं, कोई मान सम्मान कमाना नहीं, वो उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। और ऐसा उदाहरण कैसे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सकती है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कौन से गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए, ऐसा क्या जीवन में होना चाहिए जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। कभी कभी लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, भगवान को तो देखा नहीं है, फिर भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवान की भक्ति, क्या लाभ है इस सब का। हमारा प्रश्न है उन सब लोगों से, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, आपने जिस मार्ग को अपनाया है, चाहे वो धन कमाने का मार्ग हो, परिवार चलाने का मार्ग हो, समाज में कुछ करने का मार्ग हो, क्या उस मार्ग में आपको संतुष्टि मिली है? अपने हृदय में झांक कर देखिए, हम जिस पथ पर चल रहे हैं, हमने जो मार्ग अपनाया है, हम जिस प्रकार से धन कमा रहे हैं, हम जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, क्या संतुष्टि है? अगर नहीं तो बदलाव की आवश्यकता है, और ऐसा बदलाव जो महान व्यक्तियों के द्वारा यद यद आचरति श्रेष्ठस हमें बताया गया हो, जैसे शिवजी हमें वो मार्ग बतलाते हैं अपने उदाहरण से, अपने आचरण से, अपनी शिक्षाओं से। वो ये हमें सिखलाते हैं कि जीवन में संतुष्टि किससे प्राप्त होती है। ज्यादातर शिवजी के पास लोग कुछ धन मांगने आते हैं, ये थोड़ा इसको नीचे रख देना, वो अगरबत्ती को थोड़ा नीचे कहीं पे थोड़ा सा दूर रखते हैं। ज्यादातर लोग शिवजी के पास कुछ धन मांगने आते हैं, संपत्ति मांगने आते हैं, या कुछ इस भौतिक जगत में आनंद की प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि शिवजी क्या उदाहरण दे रहे हैं। व्यक्ति के स्वभाव को उसके वेश से, उसके आहार से, उसके स्थान से जाना जाता है, और शिवजी का वेश, शिवजी का स्थान हमें क्या सूचना देता है, हमें क्या शिक्षा देता है, बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। शिवरात्रि का सही अर्थ ये नहीं है कि हम मंदिर आए, शिवजी की पूजा करें और घर चले जाएं। शिवरात्रि का सही अर्थ तब होगा जब शिवजी की शिक्षाओं को अपने हृदय में लेकर जाएं। जब हम भगवान के पास आते हैं, बड़े महान व्यक्तियों के पास आते हैं, तो कुछ लेकर आना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है, लेकिन साथ ही साथ वहां से कुछ लेकर भी जाना चाहिए। हाँ, अभी आप सब ऐसा मत सोचिएगा कि आप मंदिर आए हैं तो मंदिर की चीजों को घर पे ले जाना चाहिए, पता चले मंदिर से घंटी गायब हो गई, सारा कुछ गायब हो गया, और फिर मंदिर वाले हमें पूछेंगे, भाई आपने कैसा प्रवचन दे दिया, लोग तो सब कुछ उठाकर ले गए। क्या ले जाना चाहिए हमें? शिवजी की शिक्षाओं को अगर हमने हृदय में बसाया, शिवजी के उदाहरण से अगर हमने सीखा, तो सही दृष्टि में महाशिवरात्रि होगी, नहीं तो जीवन भर ओम नमः शिवाय कहने से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब शिव जी जो चाहते हैं वो हम करें। सच्चा अनुयायी वो है, सच्चा अनुयायी वो नहीं है जो शिव जी के नाम पर गलत कार्य करे। एक बार किसी ने हमसे पूछा कि शिव जी तो भांग पीते हैं और शिव जी के अनुयायियों को भांग पीना चाहिए या फिर नशा करना चाहिए। हमने कहा शिव जी तो जहर भी पीते हैं, है हिम्मत तो पीजिए जहर, सच्चे अनुयायी है ना तो पीजिए जहर। शिव जी ने जहर पिया था, वो तो पार्वती जी ने गला पकड़ लिया, नहीं तो पूरा नीचे चला गया होता था। तो ये गलत धारणाएं हैं। शिव जी कभी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते जिससे हम गलत कार्य करें। तो शिव जी क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आइए उनके वेश की चर्चा करें। कैसा वेश है शिव जी का, आप सब तो जानते हैं। शिव जी तो कोई थ्री पीस सूट नहीं सिलाते हैं। आप लोग तो कम से कम जीवन में एक बार शादी के दिन तो सूट वूट पहन ही लेते हैं, बाकी दिन ना पहने। शिव जी तो वो भी नहीं करते हैं। आज का दिन है शिव जी के विवाह का दिन, महाशिवरात्रि। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिवस पार्वती जी से विवाह हुआ था शिव जी का, और शिव जी को ये दिवस बहुत प्रिय है। ये प्रश्न पार्वती जी ने किया था शिव जी से कि आपको कौन सा दिवस प्रिय है, पत्नी है जानना चाहती थी। तो शिव जी ने ये फाल्गुन महीने के इस तिथि को कहा कि ये बहुत प्रिय है, और इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है शिव जी की प्रसन्नता के लिए। और शिव जी का विवाह भी हुआ था। पिछली बार हम जब यहां इसी अवसर पर आए थे तो हमने शिव जी के विवाह का वर्णन किया था, आप सबने सुना होगा। आप में से कितने लोग पिछले वर्ष यहां पर थे, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। तो हमने वर्णन किया था कि शिव जी कैसे गए थे। पार्वती देवी की माता इंतजार कर रही थी, शिव जी को देखा नहीं था। शादी तो पिता ने और नारद मुनि ने तय कर दी थी। खैर अब आने वाले हैं, खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं। पहले इंद्र आए, बड़े सुंदर, सोचा ये शिव जी हैं। नारद मुनि ने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो मैनेजर है उनका। अश्विनी कुमार आए, बहुत सुंदर दोनों, तो उन्होंने कहा इनमें से कोई एक होगा। बोले नहीं, ये तो डॉक्टर है उनके। कुबेर आए, कुबेर तो ऊपर से नीचे तक सोने से लदे हुए खजांची हैं। मां ने सोचा यही होंगे, इतना सोना लगाकर आए हैं, शादी के दिन तो कोई पहन ही लेता है सोना। नारद मुनि ने कहा ये तो अकाउंटेंट है, पैसा रखने वाला है उनका। तो मां सोच रही है अरे अकाउंटेंट इतना सुंदर, मैनेजर इतना सुंदर, डॉक्टर उससे ज्यादा सुंदर, ये शिव जी कैसे होंगे। और फिर शिव जी आ गए भैंसे पे, या नंदी पे, भैंसे नहीं नंदी पर बैठे हुए, राख लगी हुई है सारे शरीर में, भूत प्रेत आसपास घूम रहे हैं, सांप है गले में, बस आ गए ऐसे ही शादी करने के लिए। मेनका ने ध्यान नहीं दिया, उनकी माता का नाम मेनका था पार्वती की, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचे ये तो हो नहीं सकता। इधर उधर देख रही थी, नारद मुनि ने पीठ पे थोड़ा थपथपाया, माता जी क्या बात है। वो देखो शिव जी आ गए। उसने तो देखा तो देखते ही बेहोश हो गई, बोले ये शिव जी हैं। जब होश में आई बोले मेरी बेटी को जहर दे दूंगी लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगी मैं तो। खैर शिव जी का विवाह, तो बात हम ये कह रहे थे कि शिव जी विवाह करने भी गए तो ऐसे ही गए, तो उनके गले में सर्प रहता है। सर्प किसका सूचक है, सर्प दो चीजों का सूचक है, एक भय और दूसरा मृत्यु, काल, सर्प रूपी। और शिव जी इसको अपने गले में टांग कर या गले में रख कर ये बतलाते हैं कि वो निर्भय हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। और वो उसके परे हैं, मृत्यु के परे हैं, भय के परे हैं। हम सबको अपने जीवन में बहुत से भय हैं। किसी को धन खो जाने का भय है, किसी को परिवार के लोगों के खो जाने का भय है, किसी को मान प्रतिष्ठा खोने का भय है, किसी को सौंदर्य चले जाने का भय है, बहुत सारे भय हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा इस जगत में जिसे कोई भय नहीं है, निर्भय, अभय चरणार बिंदरे। इसीलिए आचार्य समझाते हैं, स्वयं शिव जी समझाते हैं, भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। अभय होना चाहते हो, भय से दूर होना चाहते हो, भगवान का भजन करो। भजन भज हुरे मन श्री नंद नंदन। जो व्यक्ति भगवान का भजन कर ले उसके लिए कोई भय नहीं है, मुक्त हो जाता है भय से। वो श्रील प्रभुपाद जिनका चित्र आप यहां देख रहे हैं, इनका नाम है अभय चरणार विंद, भक्ति वेदांत स्वामी। और क्यों अभय चरणार विंद? कोई भय नहीं, भगवान के चरणों का आश्रय लिया, अकेले बिना किसी मदद के 70 वर्ष की उम्र में एक ऐसे जहाज पर जो समान वाहक था उस पर 1 महीने यात्रा करके अमेरिका पहुंचते हैं। एक सन्यासी बूढ़े व्यक्ति, कोई भय नहीं, दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा, कौन मेरी बात सुनेगा, मैं कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, किसको प्रचार करूंगा, कोई भय नहीं। अकेले जाकर उन्होंने प्रचार किया, लोगों को भगवान का नाम दिया, कृष्ण का नाम दिया। ये है अभय चरण, कोई भय नहीं। हमें तो इस जगत से, इस जहां से ये कारवार शहर से दूसरी जगह जाने में भय होता है। हम सारी व्यवस्था करके जाते हैं, गाड़ी आएगी कि नहीं, वहां पर ट्रेन लेट हो गई तो क्या होगा, सारी व्यवस्था, जेब में बहुत पैसा लेके जाते हैं। प्रभुपाद के पास कोई पैसा नहीं था, एक ही धन था उनके पास, भगवान की भक्ति, भगवान में श्रद्धा। श्रद्धावान जन हे। तो शिवजी समझाते हैं कि अगर हमें निर्भय होना है, जैसे उन्होंने सर्प टांग रखा है, भय के परे, मृत्यु के परे, तो हमें भगवान की शरण लेनी है। और भगवान की शरण ली जाती है एक तो उनके बारे में जानकर, ज्ञान प्राप्त करके। मृत्यु से परे जाना इतना सरल नहीं है। हम लोग बहुत बार सुन लेते हैं, प्रवचनों में सुन लेते हैं, मृत्यु से परे जाना है, जन्म मृत्यु के परे जाना है, सरल नहीं है। ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और इस जगत से अनासक्ति चाहिए। शिवजी अपने शरीर पर राख लगाते हैं, ये अनासक्ति का सूचक है, वैराग्य का सूचक है। हम सबके हृदय में थोड़ा तो वैराग्य होना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वैराग्य ये केवल भगवा वस्त्र धारण करने वाले लोगों के लिए है, वैराग्य हर व्यक्ति के लिए है। कैसा वैराग्य? अपने अपने जीवन में रहते हुए अपने जीवन का थोड़ा समय भगवान को देना, यह वैराग्य का लक्षण है। जब हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें हर रोज थोड़ा सा समय निकालना भगवान के लिए, भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी हमें ये सिखलाते हैं कि कैसे इस जगत से हमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं दिखलानी है। शिव जी जो माला पहनते हैं कभी कभी वो स्कल्स होते हैं, स्कल मुंडियां हैं, मुंडी कहते हैं, ये किस लिए पहनते हैं, ये क्या दर्शाते हैं, इसके द्वारा शिव जी क्या दर्शाना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, शिव जी दिखला रहे हैं कि ये जो जगत है ये शाश्वत नहीं है, हर चीज नाश होने वाली है। आप एक ऐसी चीज इस जगत में बताइए जिसका नाश नहीं होता, हर चीज नाशवान है। हमारा शरीर थोड़ा समय ही है ना, है तो नाशवान, एक दिन चले जाना है। और मिलता क्या है शरीर को, यहां तो कारवार में रबर के टायर मिलते हैं अंत में, है ना, लकड़ी मिल जाए तो अच्छा है, चंदन तो नहीं मिलता है, कोई लकड़ी मिल जाती है, रबर के टायर मिल जाते हैं, रॉकेल मिट्टी का तेल मिल जाता है, जल जाता है। वो शरीर जिसको हम लोग बहुत सजा कर रखते हैं, शिव जी दिखलाते हैं शाश्वत नहीं है। ये जगत जो हमें बहुत सुंदर लगता है ये भी शाश्वत नहीं, और इसीलिए शिव जी हमें समझाते हैं कि हमें शाश्वत ऐसी चीजों का पालन करना चाहिए, ऐसे ज्ञान को लेना चाहिए जिससे हम इस अशाश्वत जगत के परे भगवान के धाम जा सकें। भागवतम में शिव जी प्रचेताओं को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। 10 पुत्र थे एक राजा के, तपस्या करने जा रहे थे, शिव जी रस्ते में मिले, शिव जी ने पूछा कहां जा रहे हो, तपस्या करना चाहते हो, भगवान की तपस्या, बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, और बहुत सुंदर उपदेश दिए। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति परम सत्य भगवान की पूजा करता है, जो व्यक्ति उनकी आराधना करता है, उनकी शरण में जाता है, निश्चित मुक्त होता, आज नहीं तो कल, मुक्ति निश्चित है। शिव जी अपने उदाहरण से एक बहुत महत्वपूर्ण बात को हमें सिखलाते हैं, हमारे जीवन में हम इसे उतार सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को उनके बाहरी दिखावे से, उनके धन से, उनके ज्ञान से पहचानने का प्रयास करते हैं। शिव जी राख लगाकर घूमते हैं, विष्णु सांप के ऊपर लेटते हैं, क्या इससे उनकी स्थिति कम हो जाती है, क्या इससे हम शिव जी को नकार देते हैं। शिव जी अपने उदाहरण से समझाते हैं कि व्यक्ति को बाहरी लक्षणों से नहीं जानना चाहिए, उसको उसके भक्ति से जानना चाहिए, कितना उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है उससे जानना चाहिए। सती देवी जो शिव जी की पत्नी है, उनके पिता दक्ष पहचान नहीं पाए शिव जी को, अपमान कर दिया शिव जी का सबके सामने, कहने लगे कि ये जो शिव है ये राख लगाकर घूमने वाला व्यक्ति, गले में सांप लगाकर घूमता है, मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, मैं विवाह ही नहीं करना चाहता था, ये तो ब्रह्मा जी ने कह दिया इसलिए विवाह कर दिया, मेरी पुत्री की आंखें कितनी सुंदर है और इसकी आंखें, बहुत अपमान किया शिव जी का, ये देवता कहलाने लायक नहीं है, मैं श्राप देता हूं। हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि आज से कभी शिव जी को देवताओं का हिस्सा नहीं मिलेगा। कोई गलती नहीं थी शिव जी की, केवल जब वो आए शिव जी उठकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी तो कोई साधारण देवता नहीं है, इसलिए उनको खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दक्ष नाराज हो गए, श्राप दे दिया, शिव जी के अनुयायी नाराज हो गए, नंदी इत्यादि वो श्राप देने लगे कहने लगे ये ब्राह्मणों का ये तेज चला जाएगा, ज्ञान चला जाएगा, भिक्षा मांगेंगे ये लोग। और कलयुग में ऐसा ही है, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वे केवल नाम के ब्राह्मण हैं और पेट भरने के लिए भिक्षा मांगते हैं। और फिर ब्राह्मणों ने भी श्राप दे दिया, लेकिन शिवजी शांत बैठे रहे। जब एक दूसरे को ये लोग श्राप दे रहे थे, शिवजी उठे और उठकर चले गए। कोई अपमान नहीं लगा उन्हें, क्योंकि शिवजी इसके परे हैं। शिवजी बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं और बहुत जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। शिवजी को संतुष्ट करना ज्यादा कठिन नहीं है। भीष्म देव जब बाणों की शैया पर हैं, तो एक कथा सुनाते हैं, एक राजा की कथा। एक ऐसा राजा जो शिवजी का भक्त था। आप लोगों से विनती है थोड़ा सा आगे आ जाएं, पीछे लोग खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा आगे आकर। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भीष्म देव एक कथा सुनाते युधिष्ठिर महाराज को। महाभारत में एक कथा आती है, जिस समय भीष्म देव बाणों की शैया पर थे। आप सब जानते हैं कि भीष्म देव महाभारत के युद्ध के समय 10वें दिन बाणों की शैया पर गिरे और करीब 58 दिवस अर्थात प्रायः 2 महीने वो बाणों की शैया पर रहे। वो इंतजार कर रहे थे श्री कृष्ण का, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस समय मैं अपने प्राण छोड़ूं, मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण मेरे सामने हो। एक भक्त की ये लालसा होती है, इसीलिए किसी ने एक भजन भी लिखा है, जब प्राण तन से निकले। क्या भजन है याद नहीं, किसी को याद है? कुछ ऐसा भजन किसी ने लिखा है, भूल गए। वैष्णव आचार्यों के द्वारा नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध भजन है। उस समय जल्दी आना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, ऐसा कुछ है। तो भीष्म देव की इच्छा थी कि जिस समय, तो वो तो उस समय भी कर सकते थे, क्योंकि जिस समय वो गिरे श्री कृष्ण सामने थे युद्ध भूमि पर, तो फिर क्यों इंतजार किया। भीष्म देव अपने हृदय के भाव को प्रकट करना चाहते थे भगवान के समक्ष। भीष्म देव हम सबको दिखलाना चाहते थे कि कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे मृत्यु होनी चाहिए। अगर जीवन में कृष्ण नहीं है तो उस जीवन का कोई लाभ नहीं, और अगर मृत्यु के समय कृष्ण नहीं है तो ऐसी मृत्यु का कोई लाभ नहीं है। जीवन तो वो है जो भगवान को स्मरण करके, भगवान को समर्पित करके, भगवान की सेवा में जिया जाए, वो सच्चा जीना है। नहीं तो हर रोज मरते हैं हम लोग। लोग जन्म दिवस मनाते हैं किस लिए? बच्चा पैदा होता है, उसका जीवन 50 वर्ष का है। जब 20 साल का हो जाता है, उसका जीवन केवल 30 वर्ष का बचा है। 30 वर्ष का हो जाता है, जीवन 20 वर्ष का बचा है, और हम जन्म दिवस मनाते हैं। भक्तों को जीवन में जन्म दिवस मनाना चाहिए। क्यों? 1 साल और भगवान की सेवा में निकल गया, इसका उत्सव मनाना चाहिए। इसीलिए जन्म दिवस मनाने का अधिकार तो केवल भक्तों को है जो भगवान को समर्पित। इतना सुंदर जीवन, पूरा जीवन भगवान को समर्पित, सेवा में समर्पित। तो जीवन में कृष्ण हो ये दिखलाने के लिए भीष्म बाणों की शैया पर 2 महीने तक रहे, और अंत में जब श्री कृष्ण सामने आए उस समय भीष्म ने बहुत उपदेश की। भगवान ने कहा, बताओ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बहुत दुखी है, युधिष्ठिर सोच रहा है कि मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए, एक मेरे कारण। और उस समय भीष्म ने उपदेश दिए, हर उन्होंने राजधर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म सभी पर बोला। और बोलते बोलते एक कथा शिवजी के एक भक्त की, एक राजा की, वो सुनाने लगे कि एक बार राजा के पास एक ऋषि आए, बड़े महान ऋषि मार्कंडे मुनि, और उन्होंने देखा कि राजा शिवजी का भक्त है। उससे पूछा तो राजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं एक शिकारी था। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि देखिए शिवजी कैसे प्रसन्न होते हैं। मैं एक शिकारी था, एक दिन जंगल में गया शिकार करने, बड़ी मुश्किल से, को बहुत समय कोई शिकार नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से एक हिरण मुझे मिला, मैंने उसको मारा। लेकिन तब तक रात्रि हो गई, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, मैं भी घबरा गया, डर गया, तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उस पेड़ के ऊपर बैठा रहा रात भर। और वहां मेरे घर वाले वो इंतजार कर रहे हैं भूखे, क्योंकि उनको कुछ खाने नहीं मिला दिन भर, मैं ही तो देता हूं उनको जाकर। तो वहां घर वाले बैठे हैं और ये सोच सोच के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। ये राजा अपनी पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं, सोच सोच के आंखों में आंसू आने लगे, आंसू गिरने लगे नीचे। और रात भर बैठा था, नींद नहीं, डर के मारे नींद नहीं आ रही, तो क्या करूं। तो उस पेड़ के जो पत्ते थे वो तोड़ के ऐसे नीचे फेंकने लगा। फिर थोड़ा समय बीत गया, सुबह हो गई, मैं अपने घर वापस आ गया। घर वापस आकर अभी पहुंचा ही था कि एक ब्राह्मण आए, एक बहुत दिव्य पुरुष आए, और उन्होंने कहा तुम्हारा तो बड़ा भाग्य है, तुम मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, एक हिरण को ही तो मारा है, हिरण को मारने से कोई मुक्त होता तो पता नहीं आजकल तो कितने लोग मुक्त हो गए होते। तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं, तुम जिस पेड़ के ऊपर बैठे थे वो बेल का पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, और कल रात्रि महाशिवरात्रि थी, और इसीलिए आप रात भर जागे, आपने रात भर पत्ते चढ़ाए शिवजी के ऊपर, पानी चढ़ाया, पानी तो नहीं था वो, उसकी आंखों का आंसू था, लेकिन शिवजी ने उसको पानी ले लिया कि रात भर आप पानी चढ़ा रहे थे, रात भर आपने पत्ते चढ़ाए, और वो भी शिवरात्रि के दिन, इसलिए आपकी मुक्ति तो निश्चित है। तो देखिए शिवजी इतनी छोटी सी चीज को भी स्वीकार कर लेते हैं। आपको पिछली बार एक कहानी सुनाई थी, एक चोर आया था मंदिर में, तो मंदिर में आया और उसको कुछ चुराना था, कुछ चुराने के लिए नहीं मिल रहा, इधर उधर देखा तो शिवलिंग के ऊपर एक सोने का पात्र टंगा हुआ है जिससे एक एक बूंद दूध गिर रहा है। तो उसने देखा कि मंदिर में तो कोई है नहीं, तो इस सोने का पात्र ले चलते हैं, बहुत बढ़िया मिलेगा पैसा इसका। अब लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा था, इधर उधर देखा, कोई चेयर कोई टेबल नहीं थी, तो क्या करे, कोई नहीं था मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर उस पात्र को उतार रहा था, शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। चोर ने कहा अरे मुझसे क्यों प्रसन्न है, क्या कि शिवजी भी मजाक करते हैं, ऐसा लगा उसको कि शायद कभी कभी कोई करते हैं ना, कोई पुलिस वाले चोर के पास पहुंचकर तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वो तो घबरा रहा था, तो शिवजी को देखकर शिवजी ने कहा चिंता मत करो, बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तो उसने कहा भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया। शिवजी ने कहा देखो लोग आते हैं मंदिर में, खास करके सोमवार के दिन, बाकी दिन आते नहीं है, शिवजी इंतजार करते रहते हैं। सोमवार के दिन लोग आते हैं, कोई पत्ता चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, कितने महान भक्त हो तुम मेरे। शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। तो शिव जी से हमें यह सीखना है कि बाहरी चीजों से लोगों को हमें नहीं देखना चाहिए। तो दक्ष के यज्ञ में जब अपमान हुआ और आगे चलकर सती देवी ने अपने देह को छोड़ दिया, क्योंकि सती देवी ने देखा कि उनके पिता अपमान कर रहे हैं शिव जी का, और एक पत्नी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, और पिता थे तो पिता को कुछ कह नहीं पाई, तो इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि ये शरीर मुझे आपसे मिला है, लेकिन आप अपराधी हैं, आप अपराध कर रहे हैं। किसके प्रति? शिव जी। शिव का अर्थ होता है मंगलकारी, जिनका नाम सुनने से सब कुछ मंगल हो जाता है, ऐसे शिव जी का आप अपमान कर रहे हो। और इसीलिए सती ने अपना देह त्याग दिया। लेकिन देह त्यागने के पहले सती ने कहा कि किसी को बाहरी लक्षणों से हमें नहीं जानना चाहिए, हमें उनकी भक्ति देखनी चाहिए, हृदय में भक्ति कितनी है। शिव जी भक्ति देखते हैं। जैसे प्रचेताओं के पास गए, उनको उन्होंने मंत्र दिया, गुणगान किया, बहुत सुंदर गीत है जिसे रुद्र गीत कहते हैं, और शिवजी का गुणगान तो स्वयं भगवान करते हैं। अगर आप रामायण पढ़ें, तुलसी रामायण में यह कहा गया है कि रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है और शिवजी का अपमान करता है तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है, भगवान को प्राप्त करना है तो उनके भक्तों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे शिव जी को अगर जानना है तो ब्रह्मा जी से समझना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रतगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। शिव जी कौन है? वो कहते हैं जैसे दूध दही में बदल जाता है, दूध और दही में क्या अंतर है? दोनों दूध के ही प्रोडक्ट्स हैं, दोनों दूध हैं। तो ऐसे ही भगवान का रूपांतरण शिव जी में होता है। तो ब्रह्मा जी बहुत स्पष्ट करते हैं, और वैसे भी श्रीमद् भागवत में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु देवानाम पुराणानाम भागवतम का वर्णन किया गया है। सारे पुराणों में श्रेष्ठ भागवतम है, सारे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में भगवान श्री अच्युत और वैष्णवानाम यथा शंभु। शिवजी का जितना गुणगान किया जाए कम है। उनकी शिक्षाएं, उनका भाव, उनकी भक्ति, उनका गुण, उनके गुणों का वर्णन किया जाए तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा गुण है उनमें। ब्रह्मा जी में वो गुण नहीं, ब्रह्मा जी बूढ़े होते हैं। आपने ब्रह्मा जी का चित्र देखा है? हमेशा सफेद दाढ़ी वाले रहते हैं, क्योंकि 50 साल के ऊपर हो गए, 50 साल के हो गए हैं। लेकिन शिव जी को कभी आपने देखा है सफेद दाढ़ी डंडा लेकर चल रहे हैं, बड़े बूढ़े हो गए? शिव जी का शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, नव नूतन उनका एक गुण है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए तो पार्वती ने उनसे पूछा, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, पार्वती कहती है अरे आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे बताइए परम सत्य कौन है। पार्वती ने यह प्रश्न किया। अगर आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो बहुत सी जगहों पर शिव जी ने पार्वती जी को बड़ा ज्ञान दिया। जैसे एक स्थान पर पार्वती जी कुछ पूजा करना चाहती थी तो शिव जी ने कहा ठीक है विष्णु के 1000 नाम ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम। तो पार्वती देवी बड़े नियम से विष्णु सहस्त्र नाम कहा करती थी, पूजा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, समय नहीं मिला, पार्वती बड़ी दुखी हो गई कि आज मैंने विष्णु सहस्त्र नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो, 3 बार केवल राम का नाम ले लो, बस राम का नाम लेने से ये विष्णु सहस्त्र नाम का लाभ मिल जाएगा। तो पार्वती ने वो ले लिया। और ऐसे ही एक पुराण में कहा गया है कि एक बार कृष्ण का नाम लेने से तीन बार रामचंद्र जी का नाम लेने का लाभ मिल जाता है। तो कई जगहों पर तो जब पार्वती ने प्रश्न किया पद्म पुराण में कि आप सर्वज्ञ हैं, आप बताइए परम सत्य कौन है, उस समय शिव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। शिव जी कहते हैं कि ये प्रश्न तुमने करके मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता को लाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं इस प्रश्न को सुनकर। क्यों? क्योंकि मैं उस परम सत्य का वर्णन कर सकूंगा जिसका वर्णन उन्होंने भागवत में किया, पद्म पुराण में किया, कई स्थानों पर किया उन्होंने। भागवत में तो कई स्थानों पर प्रचेताओं को किया, अन्य स्थान पर किया, सती देवी को भी उन्होंने किया, दक्ष की कथा में भी उन्होंने गुणगान किया, कई स्थानों पर उन्होंने उन परम सत्य का गुणगान किया। और फिर पद्म पुराण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुम परम सत्य को जानना चाहती हो, परम सत्य वो है। तो उन्होंने उस समय वृंदावन का वर्णन किया, यमुना का वर्णन किया, गोवर्धन का वर्णन किया और फिर श्री श्री राधा और कृष्ण का वर्णन किया। भगवान के आश्रय, भगवान की भक्ति, भगवान को समर्पण, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। हमारे एक आचार्य ने लिखा है, हमारा जन्म बेकार हो जाएगा, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनो, मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। मनुष्य जन्म मिला है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जानते हुए बूझते हुए विष खा रहे हैं। तो शिव जी अपने उदाहरण से हमें ये सिखलाते हैं कि कैसे हमें इस जीवन को जीना चाहिए। शिव जी का जो वाहन है नंदी है बैल, और बैल किसका सूचक है? बैल है पाशविक प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति का सूचक है, एक पशु का सूचक है, और शिव जी उसको नियंत्रण में रखते हैं। शिव जी दिखलाते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसी सारी प्रवृत्तियों को जो हमें पशु बनाती हैं नियंत्रण में रखना चाहिए, जैसे शिव जी रखते हैं। शिव जी कौन सी पाशविक प्रवृत्तियों का वर्णन करना चाहते हैं? हमारे अंदर कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें पशु बनाती हैं? ऐसी सारी प्रवृत्तियां जो इस मनुष्य जीवन से हमें नीचे ले जाए। मनुष्य जीवन ये एक जंक्शन है। आप किसी स्टेशन पर देखते हैं जंक्शन होता है, एक ट्रेन इधर जाती है एक ट्रेन इधर जाती है, उसको जंक्शन कहते हैं। ये मनुष्य जीवन वो जंक्शन है। कहा गया है भागवत में कि इस स्थान से या तो आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, या मनुष्य बने रह सकते हैं, और अगर भाग्य हुआ तो भगवान के धाम जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये मनुष्य जीवन। इसलिए ऐसी सारी पाशविक प्रवृत्तियों को त्यागना चाहिए, पशु प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। वो सारी प्रवृत्तियां जो हमें पशु बनाती हैं, हमारे हृदय से करुणा का नाश करती हैं, शुद्धता का नाश करती हैं, सत्यता का नाश करती हैं, सारी प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। आप अपने अपने हृदय में झांक कर देखिए, आज तक का जो जीवन आपने जिया है, जिसमें आपने करुणा नहीं दिखलाई, सत्य के मार्ग को नहीं लिया, शुद्धता को नहीं अपनाया, क्या आनंद दिया है ऐसे जीवन ने? आज भी क्या आप आनंद से, स्वच्छंदता से, मुक्तता से हंस पाते हैं? हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हमें हंसने के लिए भी सोचना पड़ता है। क्यों ऐसा जीवन? ऐसा कौन सा पाप किया है हम सब ने? शुद्ध जीवन जीना चाहिए। क्या भगवान इतने क्रूर हैं कि अपने ही पुत्रों को, अपने ही संतानों को इतना कष्ट देते हैं जीवन में, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। हम कई जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है बाहरी दृष्टि से कि इनका जीवन बड़ा सुखी है। देखकर लगता है कि इनसे सुखी कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, लेकिन जब वे लोग बात करते हैं, अपना हृदय खोलते हैं, कष्टों को बताते हैं, बड़ा आश्चर्य होता। कोई व्यक्ति सुखी नहीं है इस जगत में, ऐसा क्या है? सुख पाने का मार्ग क्या है? किस मार्ग को हम छोड़ आए हैं? क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आता कि ऐसा एक दिवस हो जब मुझे सुख मिले, ऐसा जीवन हो कि फिर कभी कष्ट ना हो, बुढ़ापा ना हो, बीमारी ना हो? और बुढ़ापा बीमारी क्यों, जन्म ही ना हो। कितना कष्ट होता है जन्म के समय, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। जिस समय बालक का जन्म होने लगता है, उसके पहले बालक मां के गर्भ में अपने 100 जन्म के पापों को याद करता है। हम तो 1 जन्म के पाप को याद करके घबरा जाते हैं कि इसी जन्म में इतने पाप किए हैं कि पता नहीं अगर भगवान न्याय कर दे हमारे साथ तो एक नया नरक बनाना पड़ेगा भगवान को हमारे लिए। लेकिन भगवान न्याय करते ही नहीं है, भगवान तो कृपा करते हैं। अगर भगवान न्याय करें तो हम में से कोई यहां नहीं बैठा होगा। आप लोग मानते हैं कि आप सब ने पाप किए हैं, या आप सब कहते हैं कि मैंने कोई जीवन में पाप नहीं किया? बताइए, कृपया हाथ ऊपर कीजिए अगर आप सब ने पाप किए हैं तो। देखना चाहते कितने पापी लोग हैं यहां। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 1 पाप आप नहीं करते, सत्य बोलते हैं। हमने भी किए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इस जन्म के पापों को याद करके ही डर जाते हैं। और वो बालक मां के गर्भ में 100 जन्म के पापों को याद करता है, कितना घबरा जाता होगा वो बालक। प्रार्थना करता है भगवान से, एक बार, बस एक बार बाहर निकालो यहां से, फिर कभी मां का गर्भ स्वीकार नहीं करूंगा, वचन देता हूं आपकी भक्ति करूंगा। और फिर जब वो आता है, इस जगत में आता, बड़ा कष्ट होता है, जन्म ही कष्ट है, इसीलिए रोता हुआ आता है। और अगर नहीं रोता तो डॉक्टर्स उसको थप्पड़ मार के रुलाते हैं, है ना? क्योंकि इस जगत का नियम है रोना ही है। और अगर नहीं रो रहा है तो मतलब बच्चा नॉर्मल नहीं है। बताइए, ऐसा कहा जाता है अगर बच्चा नहीं रोता है तो बोलते नॉर्मल नहीं है, उसको तो थप्पड़ मारे जाते हैं। फिर जब रोने लगता है तो उसको कहते हैं वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बहुत अच्छा है, अभी तुम बराबर हो गए, अभी रोने लगे। तो बचपन से जन्म लेते ही उसको सिखाया जाता है कि जीवन भर रोना है बेटा, अभी से प्रैक्टिस कर लो। वो रोता है बालक, तो जन्म कष्ट है, बुढ़ापा कष्ट है। एक ऐसे जीवन की कामना कीजिए जहां जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, जहां केवल प्रेम है। आप लोगों को एक कल्पना करने के लिए कहते, कल्पना समझते हैं आप लोग, इमेजिनेशन, इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए। एक थोड़े समय के लिए भूल जाइए आप कारोबार में हैं, भूल जाइए आपके घर को, भूल जाइए आपके संबंधों को, भूल जाइए सारे कर्तव्यों को। 1-2 मिनट के लिए केवल सोचिए, हम सब अब उस स्थान में हैं जहां कोई कष्ट नहीं है, कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं करता, कोई एक दूसरे से घृणा नहीं करता, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहता, हर कोई प्रेम बांट रहा है, हर कोई प्रेम कर रहा है। ऐसा प्रेम जो भगवान की भक्ति पर आधारित है, कितना सुंदर स्थान है। कोई कष्ट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई लोभ नहीं, केवल प्रेम। ऐसे जगत की कामना हम सबको करनी चाहिए। ये 2 मिनट केवल ऐसे सोचने से कितना अच्छा लगा हम लोगों को, और अगर हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं तो कैसा होगा, और वो भी कब तक, शाश्वत, कभी मृत्यु नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऐसा एक स्थान है, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। अर्जुन एक ऐसा स्थान है जहां कोई मरता नहीं, मृत्यु नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता। ऐसा सुंदर स्थान, ऐसा आध्यात्मिक जगत, इसका आशीर्वाद शिवजी देते हैं, प्रचेताओं को देते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम उस स्थान पर जाओगे अगर भगवान की भक्ति करोगे, अगर भगवान को समर्पण करोगे, आशीर्वाद देता हूं। ऐसे स्थान पर जाओगे जहां केवल भक्ति होगी, जहां केवल प्रेम होगा, केवल आनंद होगा। ऐसा वर्णन शिव जी करते हैं। तो आज के दिवस पर शिव जी से हमें यह सीखना है, भय से मुक्त होना है तो भगवान का नाम लेना, वैराग्य उत्पन्न करना है तो ज्ञान लेना, भगवान के धाम जाना है तो समर्पण करना, भक्ति करना। और ऐसी भक्ति हृदय में जिसमें कोई छल नहीं हो, कोई उद्देश्य नहीं हो, हमारा इस जगत का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है क्योंकि उसमें आशाएं हैं, हमें आशा है ये व्यक्ति मेरे लिए ये कुछ करे। अभी हम कुछ समय पहले किसी से बात कर रहे थे, हमने ये वर्णन किया कि इस जगत के प्रेम में कुछ ना कुछ आशाएं होती हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बहन से प्रेम करती हूं और मुझे कोई आशा नहीं है उससे, फिर आप कैसे कह सकते हैं। हमने कहा कल को अगर आपकी बहन आपसे प्रेम करना बंद कर दे, आपको बुरा भला कहने लगे, आपको धिक्कार दे, क्या आप प्रेम करोगे। उन्होंने कहा नहीं, फिर तो नहीं करेंगे। तो आशा है, भले कोई धन की आशा नहीं, कोई मान सम्मान की आशा नहीं, इतनी आशा है कि मैं इससे प्रेम कर रही हूं तो ये तो मुझसे प्रेम करे, ये भी तो आशा है। इस जगत के प्रेम में आशाएं हैं और इसीलिए जब आशा पूरी नहीं होती, प्रेम पूरा नहीं। सच्चा प्रेम वो है जहां कोई आशा नहीं है, कोई कामना नहीं है। हम भगवान से प्रेम इसलिए नहीं करते कि भगवान हमसे प्रेम करें। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्म हताम करो तू वा। हम तो प्रार्थना करते भगवान आप कुछ भी करें, आप हमें दर्शन भी नहीं दीजिए, हमें पांव के तले रौन दीजिए, मर्माहत कीजिए, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रेम करते हैं। ये सच्चा प्रेम है। सच्चे प्रेम में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, सच्चे प्रेम में कोई आशा नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम बिना किसी आशा के, अहेतु की अप्रतिहता, उसका कोई हेतु नहीं हो, और ऐसा प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। तो इसलिए आज के दिवस पर हम सबको ये जानना चाहिए कि हम सबके पास समय कम है। शिवजी अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, ये क्या सूचक है, ये दिखलाता है कि समय जल्दी जा रहा है। पूर्णिमा अमावस्या, बीच में समय निकल जाता है, फिर पूर्णिमा फिर अमावस्या, शिवजी दिखला रहे हैं जीवन में समय बहुत कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये निर्णय मत कीजिए, जैसे आप लोग नेवी में काम करते हैं, आप में से बहुत लोग वो प्लानिंग करते हैं रिटायरमेंट के बाद हम कारवार में सेटल हो जाएंगे, इसीलिए कारवार में जमीन खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भक्ति रिटायरमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम इस शरीर से कब रिटायर होंगे। आपको अपनी जॉब से रिटायर होने की डेट पता है, 2 साल पहले ही आपको बता दिया जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं आपको बाहर करने के लिए। इस शरीर से रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब रिटायरमेंट है। इसीलिए आज से, अभी से भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति कोई कठिन नहीं है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विश्वास से, श्रद्धा से। आपको अभी एक प्रसंग सुनाना चाहते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले अफ्रीका में थे, वहां का एक विद्यार्थी हमें मिलने आया, अफ्रीकन लड़का था, उसको कृष्ण का नाम नहीं पता, बड़ा कठिन होता है वहां पर प्रचार करना। हम वहां पर गए, हमारे साथ एक व्यक्ति थे, हम उनको बता रहे थे, आपको पता है महाभारत में ऐसा हुआ, तो हमें देख रहा था, तो हमने कहा क्या हुआ, बोले महाभारत क्या है। तो एक लड़का हमारे पास आया, उसने हमसे कहा, हमने एक प्रवचन दिया वहां के अफ्रीकन जो लड़के थे उनको, तो उनमें से एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं जिस देश में रहता था वहां बहुत हिंसा हुई, बहुत मारामारी हुई, मुझे भागना पड़ा उस देश से। अब मैं यहां रहता हूं, 5 साल हो गए, लेकिन मैं आपको बताता हूं 5 साल में एक दिन भी मैं ठीक से सोया नहीं हूं। तो हमने कहा क्यों? उसने कहा मुझे बुरे सपने आते हैं, मैं उठ जाता हूं, नींद खुल जाती है, मैं डर जाता हूं, ये हर रोज होता है। उसने कहा मैं थक गया हूं, मैं सब डॉक्टर्स के पास गया, किसी ने कहा वो इंडियन बाबा के पास जाओ, इसके पास जाओ, वहां जाओ, सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, आप कुछ बताइए मुझे। हमने कहा हम आपको उपाय बताएंगे, लेकिन आप करोगे? बोले पूरा करेंगे। हमने उनसे कहा कि रात को सोते समय भगवान कृष्ण की कथा पढ़कर सोना। उसने कहा ठीक है। हमने कहा दूसरी बात, ठीक दिशा में सर रखकर सोना। उसने कहा ठीक है। हमने कहा तीसरी बात, भगवान के नाम का जप करना। फिर हमने उसको माला लेकर समझाया कैसे जप करना, उसको जप करना ही नहीं, कभी जीव जप तो पता ही नहीं था उन लोगों को क्या होता, उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता है। हमने उसको समझाया बोलो कृष्ण, उसके मुख से निकल ही नहीं रहा था। तो फिर करीब बड़ी मुश्किल से पहले हमने बोला बोलो हरे, तो उसने बोला हारे। हमने कहा हारे नहीं बाबा, हरे, हारे नहीं है, भगवान हारते नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से हरे निकला, फिर कृष्ण नहीं निकल रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से 10 मिनट बिठाकर उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने कहा एक माला लेके जाओ, आज रात को कर सोना, कल सुबह आकर हमें बताना क्या हुआ। वो चला गया, अगले दिन सुबह हमारा प्रवचन था, हमने प्रवचन किया, फिर कई लोग मिलने आए थे तो लोगों से मिल रहे थे, तो हमने देखा दूर वो लड़का इंतजार कर रहा था, तो हमने उसको बुलाया, तो हमने उससे पूछा क्या बात है, क्या हुआ बताओ। तो उसने कहा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं कल एक बच्चे की तरह सोया हूं, जैसे बच्चा जानता है ना, एक बच्चे की तरह सोया हूं मैं कल, मतलब कुछ पता नहीं, रात को सोया, सुबह तक कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। तो मुझे पूछ रहा था आपने दिया क्या है मुझे, कुछ बताइए क्या, कुछ जादू है, कुछ वहां के लोग कुछ जादू टोना में बड़ा विश्वास करते हैं। तो हमने कहा जादू इसलिए हुआ क्योंकि आपको श्रद्धा थी, आपने विश्वास किया कि ये हरि नाम, ये ही केवल मुझे ये शांति दे सकता है, और उसको मिला। तो इस श्रद्धा से आप देखिए, अफ्रीका में बैठा हुआ एक लड़का जिसने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, जिसको पता नहीं है कौन है कृष्ण, उसने केवल श्रद्धा से अगर नाम ले लिया और उसको लाभ मिला, अगर हम लोग ये जानते हुए कि कृष्ण कौन है उनका नाम श्रद्धा से लेंगे, तो क्या हमें लाभ नहीं मिलेगा? तो उस लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा मैं इसको रोज करूंगा, रोज श्रद्धा से करो, उसको बड़ा लाभ हुआ। श्रद्धा ये बहुत जरूरी है, शिव जी की हम लोग बात कर रहे हैं, शिव जी पार्वती जी घूम रहे हैं गंगा के तट पर। पार्वती ने प्रश्न कर लिया, शिव जी लोग कहते हैं गंगा में स्नान करने से मुक्त हो जाते हैं, क्या ये सही है? शिव जी ने कहा सही है, गंगा भगवान के चरणों से निकलती है, उसमें स्नान करने से मुक्त होते हैं। पार्वती ने कहा विश्वास नहीं है। ठीक है, अभी दिखाता हूं, मैं डूब रहा हूं, मैं डूबने जा रहा हूं, और तुम यहां पर बैठे लोगों से कहना कि मेरे पति डूब रहे हैं, उनको बचाएं, लेकिन वो व्यक्ति बचाए जो सारे पापों से मुक्त है, नहीं तो वो भी डूब जाएगा। शिव जी चले गए पानी में, डूबने लगे, बचाओ बचाओ, पार्वती चिल्ला रही है बाहर से, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। तो सब लोग भागे बचाने के लिए, पार्वती ने कहा लेकिन वो व्यक्ति जाना जो पापों से मुक्त है, नहीं तो वो भी डूब जाओगे। सारे लोग रुक गए, कोई नहीं गया, शिव जी डूब रहे हैं, पार्वती वापस चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, लेकिन वो व्यक्ति जाना जो पापों से मुक्त है, कोई नहीं जा रहा। शिव जी का केवल हाथ दिखाई दे रहा है शिव जी तो डूब तो नहीं रहे थे, लेकिन हाथ दिखाई दे रहा है। तो एक भिखारी बैठा हुआ था पास में भिक्षा मांगने के लिए गंगा के तट, वो कूद गया पानी में और शिव जी को पकड़कर बाहर ले आया। बड़ा आश्चर्य, बड़े बड़े पंडित, प्रकांड पंडित जो प्रवचन देते हैं वो कोई नहीं बचा पाए, और ये भिखारी। पार्वती ने पूछा तुम्हें डरने लगा, तुम क्या सोचते हो तुम सारे पापों से मुक्त हो? मैंने कहा था कि वो व्यक्ति कूदे जो पापों से मुक्त है, तुम कैसे कूदे? उसने कहा देवी मैं पापों से मुक्त नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, इसीलिए तो भिखारी बना हूं, लेकिन मैंने सुना है, मैं यहां पर बैठा रहता हूं, मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं तो पापी हूं, लेकिन जब मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो पाप धुल जाएंगे और मैं इस व्यक्ति को बचा लूंगा, तो इसीलिए मैं कूद गया। शिव जी ने पार्वती को कहा समझ में आया? पार्वती ने कहा कुछ समझ नहीं आया। शिव जी ने कहा श्रद्धा चाहिए, ये इतने बड़े बड़े ब्राह्मण, ये इतने बड़े पंडित जो रोज गंगा में स्नान करते हैं, प्रवचन देते हैं गंगा के विषय में, हृदय में श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो कूद जाते, विश्वास होता कि हम पापों से मुक्त हैं क्योंकि हम गंगा में स्नान कर चुके हैं, श्रद्धा नहीं है। लेकिन ये भिखारी, इसको श्रद्धा थी, शब्दों पर श्रद्धा थी कि हाँ मैं पानी में जाऊंगा शुद्ध हो जाऊंगा, इसी ये श्रद्धा चाहिए तब गंगा मुक्त करती है, नहीं तो गंगा में स्नान से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसी तरह भगवान के नाम को भी हमें श्रद्धा से लेना चाहिए, और हमें विश्वास है, जैसे उस अफ्रीका के लड़के का 5 साल का कष्ट एक दिन में एक माला करने से चला गया, अगर हम लोग रोज माला करेंगे, भगवान के नाम लेंगे तो कितना लाभ होगा। तो आप सबसे आज के दिवस पर हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज आप यहाँ आए हैं तो अपने हृदय में शिव जी की इन शिक्षाओं को लेकर जाइए। शिव जी की शिक्षाएं, भय से मुक्त होने के लिए भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, भगवद गीता भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़िए, जीवन को बदलने के लिए तैयार रहिए। ऐसा मत सोचिए कि जैसा मेरा जीवन है बस मैं तो वैसा ही रहूंगा, और फिर अगर भगवान को चाहें तो भगवान अपने नियमों को बदल दें। जीवन को बदलने के लिए तैयार रहिए। आप सबसे यही हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप सबसे आज ये प्रार्थना करते हैं कि आज के पावन दिवस पर एक वचन लीजिए कि आज से रोज भगवान के इन नामों का उच्चारण, हम घर में जहाँ भी हों केवल 10 मिनट इस नाम को हम लेंगे, ताकि इस नाम से हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं वो चले जाएं और हम शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपके कोई प्रश्न हैं पूछना चाहें तो एकाध प्रश्न अगर कोई हो तो हम उत्तर दें, और हम चाहेंगे कि दयाल चंद्र प्रभु जो यहाँ पर हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, कई वर्षों से इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, वे भी कुछ 5 मिनट समय हमें बताया गया कि 9:30 तक करना है, शायद आगे का कार्यक्रम है, तो एक 5-7 मिनट बाकी हैं। आप में से कितने लोग कन्नड़ जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कन्नड़, ओ बहुत कम लोग। तो दयालचंद तू हिंदी में बोलेंगे, हमने सोचा था वो कन्नड़ में बोलेंगे, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग कन्नड़ जानते हैं। तो आपके कोई प्रश्न, एक आध कोई प्रश्न हो तो उनको ले सकते हैं, और फिर दयालचंद प्रभु से सुनकर आगे का फिर कार्यक्रम होगा। किसी के कोई प्रश्न, मन में कोई जिज्ञासा? ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा करते हैं महाशिवरात्रि के दिवस पर शिव जी की कृपा आप सब पर हो। प्रार्थना करते हैं शिव जी से कि आप सब यहाँ पर आए हैं इस अवसर पर, शिव जी अपनी कृपा आप सब पर बरसाएं और भगवान की शुद्ध भक्ति आप सबके हृदय में स्थापित करें। हरे कृष्णा। और अभी दयालचंद प्रभु 5 मिनट केवल समय कम है, क्योंकि इनको अनुभव बहुत है भक्ति का, तो अपने अनुभव से आप सबके लिए कुछ कहना चाहेंगे। हरे कृष्ण।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने सुंदर तरीके से आज महाशिवरात्रि कैसे मना सकते हैं वो बताए। अभी आप कमी लोग हैं कन्नड़ बोलने वाले, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा। इनकी जो बात में एक बात आप याद रखना, जो श्रील प्रभुपाद उनको पहले इंस्ट्रक्शन मिला था जब उन्होंने उनके गुरु महाराज से मिले 1922 में, तो उस समय मिला है कि आप एक काम करना, स्टूडेंट थे वो टाइम में, उनके गुरु महाराज बोले यू आर ऑल्स एजुकेटेड यंग बॉयज, यू शुड टेक दिस कल्चर ऑफ इंडिया डिवोशनल सर्विस टू वैदिक नॉलेज टू वेस्टर्न कंट्री एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ जो भक्ति का कल्चर है ये ले जाके अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में दे देना, दिस वॉज अ इंस्ट्रक्शन। तो ये यंग थे श्रील प्रभुपाद, तो बोले उस समय में हम ब्रिटिश के अंडर थे, स्वराज नहीं था। प्रभुपाद बोले हम तो स्वराज नहीं है हमारे पास, हमारा कौन सुनेगा स्वामी जी, हम ब्रिटिश के अंडर गुलाम हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले चाहे तुम्हारे पास मुगल हो जावे, मुगल इंडिया को रूल किए, ब्रिटिश रूल किए, खुद स्वतंत्र बनाना चाहते हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई भौतिक सरकार की बदलना कोई मतलब नहीं है, उसको कोई संबंध ही नहीं है। भारत भूमि का आदमी का यही काम है, यहां का जो खजाना है भक्ति, ये जाके पाश्चात्य देश को दे दिया तो भारतवासी के ऊपर भगवान बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला। भगवान को संतुष्ट करने के बाद, जैसे मनुष्य जन्म मिला, भगवान को संतुष्ट करने के बाद हम ये भवरोग से, एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कितनी मां के गर्भ में जाके पुनर्जन्म लेगा, इससे निकलने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म में भगवान को संतुष्ट करना एक ही काम है। अगर हम भगवान को संतुष्ट किए तो हम सारी जो जीवी को संतुष्ट कर सकते हैं। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कलयुग में क्या दिया गया पता है आपको? यह तो कलयुग दोषों का निधि है। जैसा शिवजी ने अपने जीवन को वैराग्य से भरे हुए, वैराग्य सबसे बड़ा एक ऐश्वर्य है, तो हम भी ये भौतिक वैराग्य को आसान से छोड़ सकते हैं। शाश्वत वस्तु नहीं है ये, आपके पास कितने भी चीज हो ये शाश्वत वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान हमें भागवत में बताते हैं, जब सुखदेव महाराज को सुखदेव महाराज परीक्षित को 7 दिन में भागवतम का पूरी ज्ञान देते हैं, उसमें बताते हैं हे राजन कलेर दोषम निधे राजन, ये दो कलयुग जो है दोषों का निधि है राजन, या सब जगह दोष है, कहीं भी जाओ दोष ही है, सब बुरा भला यही सुनते रहेंगे। लेकिन हस्ती एको महान गुण, भगवान हमारे ऊपर कृपा करके एक महान गुण दिया है, क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजते। जो आदमी इस ये जो दोषों के निधियों में कैसा मुक्त हो सकता है, जैसे कृष्ण कीर्तन श्रवण करेगा, कृष्ण कीर्तन का जो जीवा से नाम ले लेगा, तो ये भव रोग से, ये भव बंधन से, ये दुख से तुरंत तत्क्षण शुद्ध हो जाएगा। बहुत सरल है ये। इसीलिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में 1965 में गए, उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसको इतना पता था हमारा भारत के जो ये दिव्या हरि नाम है ये सारी जीवी को उद्धार करेगा। इंडियन, अमेरिकन, रशियन, पाकिस्तानी, ऐसा नहीं, स्त्री पुरुष सबके लिए, क्योंकि हम जीवात्मा है, हमको मृत्यु नहीं है, शरीर नाश होने वाला है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म में हम भगवत नाम ले सकते हैं। आज जो शिवरात्रि में कोई गाय भैंस को नहीं बुलाए, मनुष्य को बुलाए, यहां आके भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो ये जीवा में जैसे हम हरि नाम ले लेंगे हमारी सारी पाप खत्म हो जाएगा, पाप करने का प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा, मन का अंदर का जितनी भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सिर्फ हरि नाम लेने में हम शुद्ध हो जाएंगे। हरि नाम लेने में शुद्ध होने के बाद हमारा लेन देन कुछ भी नहीं रहेगा इस दुनिया में, सब ऋण चुक जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा हमारा पाप का, फिर क्लीन स्लेट रहेगा। क्लीन स्लेट होने के बाद आप वैकुंठ जाने का एनओसी मिलेगा, एनओसी वैकुंठ जाने के, वैकुंठ जहां दुख नहीं है। 75% लोग वैकुंठ में है, 25% लोग हम पाप करके इधर है। हमको एनओसी लेना है, बहुत ही सरल है, भगवान का नाम लेते ही हम पवित्र हो जाएंगे, पाप से पूरी तरह से हमारा पाप खत्म होगा। एक कृष्ण नाम कोटि कोटि पाप नाश करता है, ऐसी चिंतामणि है, लेकिन उपयोग नहीं करते हम। अपना जीवा को चलाना है, अपना जीवा से हरि नाम ले लेना है, बाकी पूरी पाप खत्म हो जाएगा। अभी एक शब्द बोलता हूं मैं आपको, प्रभुपाद जाके वहां सब हिप्पी लोग थे, जैसे जिसको कृष्ण का नाम पता नहीं, भगवान का कोई नाम पता नहीं, भागवतम पता नहीं, भगवद गीता पता नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जाके उनका कान में हरि नाम किए, संकीर्तन किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, ये महामंत्र बोले सारी मंत्र इसका अंदर है, ये सारी मंत्र का अंदर, जैसा हम जीवा से मंत्र बोलेंगे तो हमारे पूरी पाप नष्ट हो जाएगा, पाप करने का प्रवृत्ति खत्म होएगा, क्लीन चिट्टी एनओसी मिलेगा, ये गारंटीड है, हम बैक होम बैक टू गॉडहेड जाएंगे, अंतिम जीवन होगा। और हमको बर्थडे मनाना नहीं है, बर्थडे बोले तो जन्म लेना नहीं है, बर्थडे मनाओ लेकिन आखिर जन्म होगा, ये गारंटीड है। तो इसीलिए बताया भगवान भगवद गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एमे एवेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुन। जो मेरा जन्म के बारे में मेरा लीला जो श्रवण कीर्तन करता है तत्वता मुझे जानता है, वो ये शरीर छोड़ने के बाद फिर वापस ये जो मर्त्य लोक में नहीं आएगा, मेरा नित्य धाम में आ जाएगा, वैकुंठ गोलोक धाम में आएगा, एक गारंटीड है। इसलिए बहुत आसान है इधर हमको कलयुग का लोगों के लिए, इवन देवता चाहते हैं कि कलयुग में जन्म लेने के लिए, क्योंकि सीधा वो जा सकते हैं हरिनाम लेके। तो हमें ये बहुत उत्कृष्ट स्थिति का हमें एक भगवान दिया हुआ गिफ्ट है, पारितोषक है, इसको हम जीवा से फिराने का कोई खर्चा नहीं है, ये जीवा से हम पवित्र करके भगवत धाम जाने का 100% गारंटी है। श्री प्रभुपाद जाके बताए, उन्होंने इनकी जितनी भी गंदा आदत थी, सदाचारी बन गए सारी जो हिप्पी लोग जिनके पास ड्रग लेते थे, नशीली पदार्थ लेते थे, वो लोग जुआ खेलते थे, मांसाहार भक्ष करते थे, लेकिन ये लोग सदाचारी बन गए, प्योर वैष्णव बन गए, पवित्र हो गए। ये जीवात्मा का जो पवित्रता है वो बाहर आता है, अंदर का अहंकार सब निकल जाता है, हम पवित्र बन जाते हैं। हमको समय बहुत कम है, जैसे प्रभु जी बोले कम समय में हमें करना है, हमारा पास बर्थ डेट है, डेथ डेट नहीं है। इसलिए तुरंत, जैसे आज शिव जी का बर्थ डेट है, उनका शादी का दिन है, तो शिवरात्रि मनाते हैं, तो हमें यही बोलना है, शिव जी मुझे ये जो भक्ति भक्ति लेके महामंत्र करके मैं भगवत धाम जाने के लिए आप शक्ति दे दीजिए, आप पूरी सहायता कर लीजिए। इतना अगर बोल दिया और ये महामंत्र जैसा प्रभु जी बोला उसको कर लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, प्रैक्टिकल करना है। ये किसी को पंडित ये ब्राह्मण को बुला के शांति करने की बात नहीं है, ये खुद को करना होगा, खुद के जीवन से उपयोग करना पड़ेगा। हम जो किया हुआ पाप दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण एक आया तो बोले, आजकल के लोगों को भगवान के पास जाने का पुरुषोत्त नहीं है, तो बोले बच्ची एक काम करना, मेरा पिताजी का श्राद्ध मनाना है, आप ही सब कर लेना, मैं जब अंतिम में जो पिताजी का प्रार्थना करते टाइम में मैं आ जाऊंगा। तो वो बहुत बिजी आदमी, तो ये उन्होंने, ये तो बड़े श्रद्धावान ब्राह्मण थे, वो कर लिए, उनको बोले आ जाओ, अभी हमें प्रार्थना करना है, आपका भगवान आपका पिताजी को वैकुंठ भेजना है, आप आओ। तो वो बोले आप ऐसा करना, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, वो भी आप ही कर देना। तो वो बोले देखो, मैं करेगा तो मेरा पिताजी जाएगा वैकुंठा, तुम्हारा पिताजी नहीं जाएगा, इतना करने को भी तुम्हें समय नहीं है तो कैसे मिल सकता, नहीं होगा। तो इसलिए हमको खुद को करना होगा, ये शांति होम वगैरह करके ये काम नहीं है, खुद ही ये महामंत्र अपने जीवन से चलाना पड़ेगा और खुद को क्लियर और क्लीन होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, हमको खुद को भगवत धाम जाना होगा। ये अंतिम जीवन है, भगवत गीता में जो दिया है वो सत्य है, और ये हम ये जो कारोबार है, जैसा गोवा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर केरला तक जो है, ये परशुराम सृष्टि है, ये हम भाग्यवान है, ये सृष्टि जो है तपोभूमि है, यहां आप एक नाम करे ले लेंगे, 1000 नाम लिया हुआ जो आपको फल प्राप्त होगा। तो ये तपस्या के लिए मिला हुआ जगह है, यहां हम सही में जो सही सत्य करके भगवत भक्ति करके जो लोग कारोबार में आते हैं वो लोग को यही दिखाना है, यहां पवित्र जगह में आप पवित्र होके भगवत धाम जा सकते हैं। आज का शिवरात्रि का दिन हम यही प्रार्थना करेंगे, हमें और पाप करना नहीं है, और हमें ये जो मिला है कारोबार जैसे जगह में हरे कृष्ण मंदिर आए हैं, तो आप जाके सारी जो शास्त्र समझ लेना, और बहुत सरल है, मां मंत्र सदा रहना चाहिए, ये हमारा कैपिटल है, हम जो कमा के रखते हैं उसमें से एक पैसा भी ले जा नहीं सकते हैं, हम आए भी नंगा आए, कुछ लाए नहीं, और जाते टाइम में भी कुछ ले नहीं जाना है, सोना भी नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं। कन्नड़ में एक है पुरंदर दास बोलते हैं, गोविंदा हरि గోవిందా హరి గోవిందా. మడది బారలు మంచబారదు, కంచు కన్నడి బారదు. గోవిందా హరి గోవిందా హరి గోవిందా హరి గోవిందా. బతాతే హై ఆప్కో ఎక్స్ప్లెయిన్ కర్తా హూ. తుమ్ ఇత్నీ అచ్చీ సే సబ్ బనా కే రఖా హై, జీవన్ దియా హై, దౌలత్ సబ్ జమా కే రఖా హై, లేకిన్ మడది బారలు బహుత్ ప్రేమ్ కర్నే వాలీ పత్నీ హై, వో తుమ్హారీ సాథ్ నహీ ఆయేగీ. మంచ బారదు, జిస్మే బహుత్ ఆసక్తి సే సో రహే ఆప్ ఉస్ కాట్ మే, వో మంచ మే బహుత్ ఆసక్తి హై, వో నహీ ఆయేగా. కంచు కన్నడి సబ్ లా కే ఘర్ భర్ దియా, వో ఫ్రీజ్ వాషింగ్ మషీన్ ఏ సారీ జో చీజ్ భర్ గయా, వో భీ నహీ ఆయేగా. ఆప్కో సిర్ఫ్ క్యా హై, ఆప్నే జో హరి నామ్ లియా హువా వో ఆప్కా సాత్ జాయేగా, వో అప్నా క్యాపిటల్ హై, వో జ్యాదా బడానా. బైఠతే ఉఠతే ఉసురు ఉసురు యే కుసుమనా బనే సురు, శ్వాసోచ్వాస్ మే హమ్కో హరి నామ్ ఆనా చాహియే. కుచ్ భీ హోగా, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఏ జరూర్ యాద్ రఖనా, కిసీకో పూచనేకో జరూరత్ నహీ హై. మృత్యు కే సమయ మే క్యా కర్నా చాహియే, ఇస్లియే కభీ భీ మృత్యు ఆ సక్తా హై, తో మహామంత్ర చాలూ హీ రఖ్ కే అప్నా ఆప్కో బచానే కా. ఔర్ ఆప్ లోగ్ జైసా భీ సమయ మిలేగా సండే కో జో మందిర్ మే జానా, వహాన్ పవిత్ర తరఫ్ సే సహీ దిశా సే ఆప్కో సత్య జో మిలేగా, వో సత్య ఆప్ సాక్షాత్కార హోగా. జీవాత్మా కా ఆప్ ఉద్ధార్ కర్కే కారువార్ వాలే కా సభీ భలా హో జాయేగా, యహీ మే ఆప్ సే రిక్వెస్ట్ కర్తా హూ. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. సో దయాల్చంద్ ప్రభు కా బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్. కుచ్ సూచనాయే దేనా చాహతే హై, ఔర్ ఉస్కే బాద్ ఫిర్ ఆప్ లోగ్ జా సకేంగే. ఏక్ దో మినిట్ కేవల్ కుచ్ సూచనాయే హై.
హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్కా బహుత్ బహుత్ ఆభార్. ఇస్కాన్ టెంపల్ కరవా సే ఏక్ భగవద్ గీతా కో 6 దిన్ కా ఆయోజన్ కియా గయా హై, హమారే ఆగామీ హీ జో మహాసిటీ టెంపల్ కే సామ్నే హై గవర్నమెంట్ స్కూల్ మే. యే సిర్ఫ్ పురుషో కే లియే హై, తో ఆప్ సభీ సే హార్దిక్ నివేదన హై కి యహాన్ అధిక సే అధిక మాత్రా మే భాగ్ లే, ఔర్ భగవద్గీతా కే బారే మే కుచ్ జ్ఞాన్ ప్రాప్త్ కరే. ఇస్మే ఆత్మ సాక్షాత్కార కా విజ్ఞాన్ కే బారే మే బతాయా జాయేగా, జిస్మే కుచ్ పాయింట్స్ హై జైసే కి క్యా భగవాన్ హై, ఆనంద్ కి ఖోజ్, మే కౌన్ హూ, ఏక్ భగవాన్ యా కై భగవాన్, ఔర్ అచ్చే లోగో కే సాథ్ బురా క్యూ హోతా హై, యే సభీ विस्तार से बताया जाएगा. और ये हमारा अहो भाग्य होगा कि ये क्लास ये कोर्स श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी ही लेंगे. तो आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में भाग लें, और अधिक जानकारी के लिए मंदिर के सामने जो काउंटर लगा है उसमें जाएं, वहाँ कुछ भक्त हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे. और उसका जो डेट है तारीख वो 11 तारीख से शुरू होगा जो 6 दिन का है.
హరే కృష్ణ. తో బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ ఆప్ సబ్కా. ఔర్ జో భీ లోగ్ ఇస్ కోర్స్ మే ఆనా చాహే వే లోగ్ ఆ సక్తే హై. ఔర్ ప్రభు జీ కీ ఇచ్ఛా హై కి ఇత్నా మహామంత్ర కే విషయ మే బోలా గయా హై, తో జానే కే పహలే ఆప్ సబ్ జో భీ జహాన్ బైఠే హై ఖడే హై వహీన్ సే ఏక్ బార్ మహామంత్ర జోర్ సే కహేంగే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఐసా కహా జాతా హై జబ్ దోనో హాత్ ఉపర్ కర్కే హమ్ లోగ్ భగవాన్ కా నామ్ లేతే హై, తో జితనే భీ పాప్ హై వో ఉడ్ జాతే హై, చలే జాతే హై. లేకిన్ కభీ కభీ జో దోనో హాత్ ఉపర్ కర్కే నామ్ నహీ లేతా, వో సారే పాప్ ఉస్కే పాస్ చలే జాతే హై. తో క్షమా చాహతే హై, అగర్ కోయి వ్యక్తి రహ గయా హో తో సారో కే పాప్ ఉస్కే పాస్ చలే జాయేంగే. ఇస్లియే ఏక్ బార్ ఔర్ సభీ లోగ్ జోర్ సే హాత్ ఉపర్ కర్కే కహేంగే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. హమ్ ఇస్ మందిర్ కే వ్యవస్థాపకో కే భీ బహుత్ ఆభారీ హై, మందిర్ కే జో మేనేజ్మెంట్ హై, कि वो हर वर्ष यहाँ इस अवसर पर हमें बुलाते हैं, भगवान की कथा कहने का अवसर देते हैं, और वैसे भी हम लोग यहाँ और भी कार्यक्रम करते रहते हैं। बहुत मदद हमें यहाँ के मैनेजमेंट से मिलती है। रेगुलर हर शुक्रवार को भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं। अभी भगवद गीता कोर्स भी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत मदद कर रहे हैं। और फिर शायद अप्रैल के महीने में हम लोग 3 दिन की राम कथा भी यहाँ पर करेंगे। राम कथा होने कब से डेट फिक्स हुआ? नहीं, 8, 9, 10 ओके, 8, 9, 10 अप्रैल को 3 दिन यहाँ पर रामचंद्र जी की कथा होगी, क्योंकि उसके बाद 8 दिन बाद रामनवमी है, तो भगवान राम की कथा होगी, तो आप सब उसमें भाग लीजिए। तो इस सब के लिए मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, पूरा मैनेजमेंट बोर्ड, प्रेसिडेंट इत्यादि जो भी हैं जिन्होंने मदद की है, उन सबको बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू।
Thank you.